कृष्णाधे कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ज्ञान प्राप्त तमन्ते जगन्नाथ जी का रथारोहण, उसके बाद में सात बलों के द्वारा रथ के आमने सामने पीछे सात बलों द्वारा कीर्तन, महाप्रभु जी सातों बलों में कीर्तन किया, प्रताप रूप राजा का उसमें झाड़ू देना, महाप्रभु जी का उससे प्रसन्न होना, औरत का बलगंडी क्षेत्र में उपस्थित यहाँ तक हम लोगों ने महाप्रभु जी भावावेश में, जब राधिका जी के भावावेश में होते हैं तो नित्यानंद प्रभु जी दूर हट जाते हैं और द्वैताचार्य जी भी दूर रहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो बलदेव प्रभु के अभिन्न विग्रह हैं। इसलिए रसाभास का दोष न कहीं हो जाए, इसलिए राधा भाव में जब महाप्रभु जी आविष्ट हो जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी उनको पकड़ने के लिए नहीं आते। उस समय में सोना की पुतली जैसे मट्टी में धूल में लोट टूट जाती है, महाप्रभु जी को उसमें पकड़ने वाला नहीं कोई रहता, अच्छा प्रसार खाने लगते हैं। यहाँ तक कब तक हम लोगों ने वर्णन किया था, आज लक्ष्मी विजय अथवा डेरा महाप्रभु जी रथ यात्रा आरम्भ हुई थी कब, चतुर्थी आज पंचम दिन में तेरा पंचमी तिथि है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, गौरव प्रसन्नात्म बन गई श्री लक्ष्मी विजयोत्सव सुप्राभूति रसोल्लासम कृष्ण ब्रह्मानंद चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से परिवेष्टित होकर के लक्ष्मी विजय डेरा पंचमी के उत्सव का रसास्वादन किया और गोपियों के रस का उल्लास सुन करके लक्ष्मी इत्यादि की अपेक्षा गोपियों का रस में उल्लास है, इसको सुन करके श्रेष्ठ होकर के प्रेम से जिन्होंने नर्तन किया चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम। पहले उन्होंने बताया रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को इस प्रकार से स्मरण किया है, लीला चलपते वैष्णव जन स्वचैतन्य चैतन्य महाप्रभु जी रथ के स्वयं जगन्नाथ जी ने फिर भी रथारूढ़स्य रथ में जो आरूढ़ निराकल पति जो जगन्नाथ जी हैं उनको वृंदावन में ले जाते हुए रथ में प्रेम की उर्मियां, प्रेम की लहरियां उनके हृदय में, महाप्रभु जी के हृदय में खेल रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। और जैसे नतमस्तक करता है महाप्रभु जी आविष्ट होकर के ऐसे नृत्य कर रहे हैं भाव के सहित, सहर्षम गायत्री पर्वतम वैष्णव जन और अपने परिकरों के द्वारा स्वरूपदामोदर राय रामानंद बासु घोष नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य वक्रेश्वर पंडित इत्यादि जितने भी गायक और नर्तक हैं उनके द्वारा परिवृत होकर के वो चैतन्य महाप्रभु ऐसे जो नित्य इत्यादि का विलास कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की पुनः हमारे आंखों के सामने में अब दिखेंगे। कौन कर रहा है, रूप गोस्वामी जी। उन्होंने रथ यात्रा में महाप्रभु जी को इसी रूप में दर्शन किया था, इसलिए ये यहाँ पर विशेष रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर कहाँ से सुना उन्होंने, एकदम गोस्वामी और इसके बाद में दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी का इनका साक्षात्कार और सनातन गोस्वामी का नहीं है, ये पीछे से आए, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी से ही जीव गोस्वामी से उनकी भेंट हुई है। इसलिए जितनी भी ये सब बातें हैं सब उनसे उन्होंने उनसे ग्रहण किया। और स्वरूप दामोदर जी का पर्चा इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रेम में आविष्ट होकर के रथ में रथ के आमने सामने नृत्य करते हुए कुछ फक से गए हैं इनके भक्त लोग और ये भी क्लांत तो कुछ लिखा है। और इसी समय बलगंडी ने दो पार्थों रथ वहां पर प्रविष्ट हुआ। वहां पर जगन्नाथ बल्लभ जी का बगीचा है, आई टोटा भी इसको कहते हैं। आई टोटा जगन्नाथ बल्लभ को ही कहा गया, कुछ लोग कहते हैं जगन्नाथ जी जहां पर ठहरते हैं सुंदराचल के पास, तो नहीं यही है बनते, यही पर महाप्रभु जी देखा जब भोग लग रहा है दृष्टि भोग, लाखों भक्त लोग जो जहां से वहीं से वो अपना जो ले गए हैं भोग देने के लिए वहीं से ठाकुर जी को दृष्टि भोग करा देते, विशेष करके नारियल फेंक फेंक करके या उनको दृष्टि भोग करा करके उनको करते हैं, मिठाई कटहल आम ये सभी चीजों का भोग लगता है। जगन्नाथ देव मात्र दृष्टि भोग से जहां पर जो है उसी का वो भोग लगा देते हैं। महाप्रभु जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो रही है, सब लोग भोग लगा रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं, तो महाप्रभु कुछ समय के लिए जगन्नाथ जी को छोड़ करके चले गए आई कोटा में। और वहीं पर बीरा उनका पहले तो रहा था हो रहा था सही तो प्राणनाथ पाई, किंतु वहां से जब चले थे फिर हमारा और उस समय उनकी स्थिति हुई कृष्ण नाम का ज्ञान हो गए हैं राज से, इसकी भावना करते 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 भावित होकर के एक पेड़ के ऊपर में जड़ पर अपने सिर को देकर के आंखों से आंसू गिर रहे हैं और अश्रु पुलक रोमांचित इत्यादि हो रहे हैं। उसी समय में भक्तों के कहने से राय रामानंद जी प्रताप साधु भट्टाचार्य जी और महाप्रभु और जो परिकर इन सबको प्रणाम लेकर के और उनका उनका अनुग्रह प्राप्त होकर के आदेश लेकर के हिन्द काले प्रताप रुद्र परिलाप प्रवेश, प्रताप रुद्र जी ने जहाँ पर महाप्रभु जी शयन कर रहे थे शयन माने वहां पर लेटे थे उन पर रूप प्रवेश, कैसे सार्वभौम उपदेश से सार्वभौम के उपदेश से छाड़ी राज वेश 1,00,000 वैष्णव से परिलाप प्रवेश, उनके परामर्श से राजवेश को उन्होंने रख दिए, केवल एक धोती नीचे में और उसी को ऐसे करके साधारण वेश में अकेले वैष्णव वेश में तिलक इत्यादि गले में माला है साधारण वैष्णव वेश में वहां पर उपस्थित हुए। सब हमसे आज्ञा की लो जोर हाथ दुनिया प्रभु पद करें बड़े साहस कर साहस कर लिया क्यों महाप्रभु जी ने आदेश दिया कभी हमारे पास में न आने पाए हमारे सामने आएंगे तो मैं तुम छोड़ करके चला जाऊंगा, तो आज साहस किया इन लोगों के कहने से साधु भट्टाचार्य अभिषेक चलते राय रामानंद के कहने से उन्होंने साहस करके वहां पर प्रवेश किया। आंखी मुखी प्रेमी प्रभु भूमि के शयान विपत्ति में पुण्य करे बाद संभव, वहां पर उनकी आंखों को बंद करके भावाभिष्ट होकर के भूमि में ही पेड़ की जड़ को सिर के नीचे रखकर भावाभिष्ट होकर के लेटे हुए कैसे लेटे मनोरास में कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, इस रूप में वहां पर उनको ऐसा प्रतीति हुई। और राजा बड़ी निपुणता के साथ में धीरे 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 करे पाद संवाहन धीरे धीरे पैरों को उनको सहदान कर दिया, महाप्रभु जी क्लांत नहीं है। रासलीला शोक पड़ी करे न स्पमन जय के अधिकम अध्याय कर जय के अधिकम ये 31वां राज संचय अध्याय का दशम का 31वां अध्याय प्राणों में मुख्य प्राण इमानतीज उसको पार कर। जय पिते पिता जन्म ऐसे सब उसमें कितने श्लोक का पंद्रह सोलह उन्नीस उन्नीस श्लोकों का पाठ बड़े सुनी में उच्चारण यदि ठीक हो तो आप उसमें अपने आप झलकने लगता है। ऐसे ही अर्थ के सही शब्द विन्यास और उसका उच्चारण करते हुए सुंदर से स्वर से गायन करते पहले से धार्मिक राजा लोग भी बड़े बड़े विद्वान होते थे, विद्वानों का इसीलिए आदर करते थे। सुनते सुनते प्रभु संत एक एक श्लोक पढ़ते जाते हैं और महाप्रभु का हृदय अवगत होता जा रहा है, अपार संतोष हो रहा है। इसीलिए पाठ सम्मान करते यदि श्लोक साथ में नहीं उच्चारण होता है तो यदि केवल सम्मान करते ना तो महाप्रभु का होश साथ आ जाता है और उनको देकर के क्रोधित हो जाते हैं, उनको फिर अंग में भंग हो जाता। इसलिए पाठ सम्मान के पहले ही उन्होंने यह अध्याय का पाठ आरंभ करते हुए धीरे धीरे उनका महासम्मान महाप्रभु जी को संतोष हो रहा है। सुनते सुनते प्रभु संतोष अपार बल बल बलि प्रभु बलदार दार। और बोलो और कहो आगे कहो आगे कहो से तब कथामृत श्लोक राजा ने कहिल उठि प्रभु प्रेमावेश आनंदवान कहिल তুমি বলে বহু অমূল মোর কিছু দিতে কতে 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 নৌমা শ্লোক তবাম শ্লোক আয়া মহাপুরুষ সব রাহা নিয়ে ঝট উঠল প্রেম আবেশ আনন্দন করদয় সে লগা দিয়ে তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য তুমি মুখে বহু অমূল্য রত্ন দিয়া बोले पीछे देते नहीं और मैं मेरे पास में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं दे करके तुम्हारा इस रूप से पूरे हो जाऊं। अब मेरे पास में केवल एक ही है अपना हृदय तुमको दे आलिंगन करना में क्या होता है हृदय को दे इसलिए मैं अपना हृदय प्रेम के साथ में तुमको दिया। ऐसा बोले से श्लोक अंग कम पवित्र जलधार ऐसा कहते महाप्रभु जी फिर से श्लोक का उच्चारण करने लगे बारह बार श्लोक क्या तब कथा मृतम महाप्रभु जी बार बार इस श्लोक के पहले एक और श्लोक है इससे इसकी संगति वह मधुर गया कुछ करेगा इसका तात्पर्य है साधारण मधुर या गिरा आपकी मधुर जो गिरा है वो भी यदि आपकी वाणी को
यदि आप नहीं यदि आप जो कह रहे हैं तो वो तो बहुत ही हमारे लिए मूल्यवान है। दूसरे भी यदि आपकी इस वाणी का गायन करते हैं या श्रवण कराते हैं, इसी से हम जीवित हैं, तो जीवित नहीं रह सकते। मधुर या गया बल्कि बात क्या बल्कि बात क्या माने अत्यंत मनोहर जो आपकी वाणियां हैं। यहाँ पर बल्कि माने क्या मुझाने वाले मुझाने वाले क्या सोलून इत्यादि वाक्य सोलून माने क्या विलग्न करते हुए हंसते हुए जो बातें कर रहे हैं अपने भाव को छिपा करके एक भाव को बतलाने के लिए दूसरे रूप में उसको कह रहे हैं। ये जो आपके सुन बल्कि वाक्य मनोहर वाक्य हैं उसको सुन करके बल्कि वाक्य उनके लिए चित्त को हरण करने वाले हम लोग की तो बात क्या हमारा इस बात छोड़ दी बुध मना गंभीर जो रसिक लोग हैं उनके लिए चित्त को आकर्षक आपके लिए मधुर वाणी है उसका एक क्षण मैंने क्या आपके जो नए हैं कैसे हैं कमल नए हैं आप गर्वाणी भी है और इधर ने आप मैंने सौंदर्य भी आप कान भारत भी बताइए कमल नए हैं उसका एक क्षण विधि करी इमान वीर गुरुदी अदर सिद्धना आप कृपा करके आप ये जो वाणी जिस अदर से निकलती है उस मधुर वाणी का हमें पान कराइए नहीं तो क्या होगा हम अभी मर जाए बुद्धियती बुद्धियती मैंने वो माने ये दसम दशा को हम प्राप्त हो जाए कृष्ण राजा तुम्हारा मर जाना ही अच्छा तुम मर जाओ तो अभी तक मर क्यों नहीं गए तो नहीं मर गई अभी मर कैसे जाए मरना जीना तो अपने हाथ में नहीं है एक तो हमने मन को समर्पण करके कहां रख दिया है आत्मा इसलिए हमने समझा कि हम तो मर जाएंगे इसलिए अपने मन को आपके चरण में रख दिया इसलिए कि वो सुरक्षित रहेगा इसलिए वो नहीं मरता। दूसरी बात तब कथा अमृतम इसी के उपाय तब कथा अमृतम तत्व जीवन इसके बहुत सारे सब बहुत प्रकार के अर्थ हैं जिसमें दो प्रकार के अर्थ यहां पर किए गए तब कथा अमृतम तत्व जीवन पहले प्रकार में आपकी कथाओं मैंने कृष्ण की कथाओं कथा रूपी अमृत का यहां पर उनकी महिमा बतलाई जाए वो कैसा है अमृत के समान क्यों तप्त जीवन जिनके जीवन इस जगत में संसार में नाना प्रकार से दुखों से जल रहे हैं उनके जीवन को शांत करने वाला ये आपकी कथा है। यदि कोई दुख में तड़पड़ा रहा हो उसको शांति के लिए बस कृष्ण की कथाएं ही शांति दे सकती है ऐसी कोई दूसरी कथा नहीं जिससे शांति ना मिले इसलिए आपकी कथाएं अमृत को सकती यहां तक कि जो आपके गृह में जो तड़पड़ा रहा है और जिसके लिए कोई सांत्वना का विषय नहीं है आपकी कथाएं उनको शांति और सांत्वना दे सकती है और कभी काम दूसरी बात अमृत तीन प्रकार की बताए पहले श्लोक में इसका वर्णन किया पहले श्लोक है ना जय देहकम जन्म ना बज स्वैत इंदिरा स्वस्वस्त्र ही दैत दृश्यतां दृश्यतावका कई विकास व
काम लेते
इसके बाद
तो कभी से जवाब पे
आप इसी इसी में तो बताए तो ये कह रहे हैं अमृत तीन प्रकार के होते हैं एक होता है स्वर्ग में जो देवताओं को प्राप्त करता है वो एक और एक होता है समुद्र सागर से पार होने वाला कर करके जो मोक्ष होता है कर्म जो फिर कभी आदमी मरता नहीं है जन्मने जन्मने जाए नहीं तो मरने का प्रश्न इसलिए वो कथा न मिलता है, उसमें आदमी मरता है। जगत का ये स्वर्ग कामृत पीने से कुछ दिनों तक एक मानवांतर तक आदमी नहीं मरता है, देवताओं की उम्र बढ़ी तक बस उसके बाद में फिर मर जाए, इसलिए उतने समय के लिए उसको अमृत कहा गया। और मुक्षामृत है, फिर जन्म नहीं होगा तब फिर मरण होने का प्रश्न ही था, इसलिए इसको मोक्ष को भी अमृत कहा गया। और तीसरा अमृत है
प्रेमामृत,
ये प्रेमामृत और हरि कथामृत दोनों एक है, दोनों में अंतर नहीं है। अब ये तुलनामूलक दृष्टि से दिखा रहे हैं, स्वर्ग अमृत पीने पर भी काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इत्यादि सब बढ़ जाते हैं, उसमें अपराध होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनको देखो कुबेर के पुत्र प्रार्थना करके उसके सभी चीज बढ़ गए और नरक के चरणों में अपराध कर दिया, इसलिए वो ठीक नहीं है। मद मात्सर्य इत्यादि को बढ़ाता है, सब समय भयभीत रखता है, इसलिए वो ठीक है। दूसरा मोक्षामृत है, फिर जन्म मरण नहीं होगा, त्रिताप इत्यादि नहीं रहेंगे, किंतु पॉजिटिव रूप में कोई आनंद की सत्ता उसमें नहीं, इसलिए इन्हें ठीक नहीं है, इसलिए इन दोनों से श्रेष्ठ है प्रेमामृत, भगवान की कथा रूपी वो समूल ही काम क्रोध इत्यादि सबको ध्वंस कर देती है, और भगवान के चरणों में नित्य काल के लिए रस का आस्वादन कराती है, ये हरि कथा। कभी निर्णितम, कभी भी अनद्या सु संरक्षण सनातन ब्रह्मा शंकर इत्यादि के द्वारा तीरितम मैंने पूजी की है, ये कथाएं आपकी, अर्थात भगवान की जो कथाएं हैं ये जैसे कि ये रासलीला सुमद भागवत के 35वें अध्याय में ये वर्णन किया जाएगा, जो वृद्ध मने शंकर ब्रह्मा और शंकर इत्यादि इन कथाओं का आदर करते हैं, गोपियों के इस चरित्र का भी वर्णन करते हैं, वंद्यमान
वृंदवान
मैंने वहां पर ब्रह्मा इंद्र शंकर इत्यादि के लिए लिखा गया, और भी उसी में और भी सब किया गया है, तो इसलिए इन लोगों के कर अथवा प्यास सूख दशमपान इत्यादि ये ऋषि इन लोगों के द्वारा भी ये वंदमान है, क्योंकि ये लोग इन कथाओं का जन कर रहे हैं। कलमास कलमसापहम कलमस अपहम कलमस को दूर करने वाला, कलमस को दूर करने वाला मैंने क्या है, चित्त को शुद्ध करने वाला, उसको शांत प्रशांत बनाने वाला, समस्त पापों को दूर करने वाला है, अपराधों को दूर करने वाला है, अनर्थों को दूर करने वाला है, कलमस अपहम यदि हरि कथा का श्रवण किया जाए, समन मंगलम स्वर मात्र से ही कल्याण देने वाला है, चेतो गर्म भंडार्जनम भव महाप्यावर्तन निर्वार्पण श्रेया कैरव चंद्रिका वितर, इसलिए समस्त कल्याण को यह देने वाला है, ये स्वर्ण मात्र से ही हरि कथा। श्रीमद आततम श्रीमद आततम श्रीमत माने श्री से संपन्न, समस्त प्रकार के श्रेयों से ये तुप्त करने वाला है, आतपन माने व्याप्त, सर्वत्र ये व्याप्त है, ऐसे हरिनाम को जो परिणती पूरी ग्रहण की दे, इस पृथ्वी लोक में जो गायन करते हैं इन कथाओं का कथन करते हैं श्रवण कराते हैं वे भूजदा जना, वो समस्त प्रकार के गायनों में भूजदा सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा अर्थ यदि कृष्ण हो उपस्थित, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा यदि कृष्ण उपस्थित हो और उनके सामने यदि उनकी कथाएं हो रही हैं तब तो वो अमृत के समान है, अन्यथा मृत सदृश सदृश उनकी कथाएं तब कथा मृतम। आपकी कथाएं कैसी हैं? तप्त जीवन, जीवन को उत्तप्त करने वाली है। कब? अब इस समय कृष्ण नहीं है, अंतर्ध्यान होगा, उसमें उनकी कथाओं का स्मरण होने से उनकी समस्त लीलाओं का स्मरण हो जाता है और स्मरण होने से उनका जीवन तप्त हो जाता है, मृत्यु दशा तक को वो प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आपकी कथाएं जो हैं आपके हृदय में मारने का काम करती है, इसलिए विश्व शब्द वही नहीं। यदि आग में या तवे के ऊपर में जलता हुआ तवा हो और उसमें पानी का या घी का छींटा से दे दे तो क्या होगा? तो ज्वलित हो जाए, जल जाता, थप से जल जाता। ऐसे इस विरह की अवस्था में आपकी ये जो कथाएं हैं हम लोग के हृदय रूपी तवे पर जब ये पड़ती है तो वो और भी प्रज्वलित होकर के विरह ताप को और अधिक बढ़ा देती है। तप का जीवन कपे रेणितम, कपे रेणितम मैंने जिन लोगों ने आपकी कथाओं की महिमा बतलाई है वो अतिरंजित रूप में है। तात्पर्य क्या है? कपेर एकदम उन लोगों ने केवल महिमा का दान ऐसा ही किया है जैसे कि कभी लोग किया करते हैं, या घोड़ा आकाश में उड़ रहा है, आकाश में फूल खिल गए हैं, ये सब चीजें होता, ये शेर बत्तख प्रेम है, ये गधा है, अभी तो कथा नहीं हो जाएगा, ये उपमा के रूप में कभी लोग ऐसा वर्णन करते, बस वर्णन करना उनका स्वभाव है इसलिए वर्णन किया। कलमशापहन, कलमशापहन मैंने विपत्तियों को दूर करने वाला नहीं, कलमश को दूर करना वाला नहीं, वो कवियों ने इसको इसी रूप में वर्णन किया है, ये नाम सुनने से ऐसा कलमश दूर हो जाते हैं, किंतु यह बात हम अनुभव करके बतला रहे हैं नहीं हो, ये कवियों की कल्पना मात्र है, समर्पण करें कलमश आप कलमश दूर हो जाता, यदि कलमश हमारा दूर हो जाता हमारा कोई पूर्व पूर्व जन्म का अपराध या पाप है जिससे कि आप अंतर्ध्यान हो गए और हम जीवित ही मर रहे हैं और इतना दुख भोग कर रहे हैं, इसलिए ये कभी लोगों की भी ऐसी कल्पना है, यथार्थ में उसके द्वारा दूर नहीं होता। स्वर्ण मंगलम जब तक सुनते हैं तभी तक बड़ा सुखकारी मालूम होता है, केवल सुनने में ही वो मंगल होता है और कुछ उसमें मंगल नहीं है। हम तो देख ही रहे हैं हम तो बड़ा रहे कितनी दुखी है। श्री मदातम यहां पर आततम सी पर ये आततम यहां पर मैंने खंडन कर सी को काट करके दूर कर देता है। कौन? हरि कथा। किस चीज को? यदि आदमी संसार में सुखी है किसी प्रकार से उनके सुख को दूर कर देता है, बंधुओं से बिछुड़ा देता है, संपत्ति इत्यादि से दूर करा देता है, उसको त्याग कर देता है यदि कोई इस कथा को सुने। इसलिए धनी मानी लोगों को सुखी नहीं देखना चाहते, वो पैसे के बल पर लोगों को पुस्तकें दे करके बगल में दे देते हैं और उसके बारे गांव गांव में इस कथा का प्रचार करते हैं और उनको दुखी बना देते हैं। उनके समान जो इन कथाओं को देने वाले हैं जिन्हें पैसे की दर दर वितरण करते हैं और सुनाते हैं सौन कराते हैं वो गुरीदार हैं, वो गुरीदार हैं, अत्यंत छेदन करने वाले प्राण घातक हैं, गुरीदार प्राण घातक। इसके द्वारा प्याज स्तुति बताया व्यास स्तुति को। दोनों स्थितियों में हरिकथा की महिमा का वर्णन किया है गोपियों ने। मां कुंभी भावनाविष्ट हो गए, अविष्ट होकर के इस श्लोक पर अपने भावना के अनुरूप में ग्रहण कर रहे और उनके उनको आलिंगन कर दिया। दुविधा दुविधा बोले परे आलिंगन और आराम उनको उनको भी दुविधा दुविधा का मिले, क्योंकि आपने यराज पंचाध्यायी के इस अध्याय को आपने हमको दुर्भाग सुना रहे हैं। आपके समान दुविधा और कोई व्यक्ति नहीं, गुरी गुरी देने वाले मैं आपका, आपके समान और जगत में कोई दानी नहीं है।
दाता शिरोमणि
आप या नहीं जाने यह है कौन जाने, ये कौन जाने ये नहीं समझ रहे हैं, बस आलिंगन देकर के और बार बार प्रशंसा उनकी कर रहे। पूर्व सेवा देखी तार कृपा उपजिल अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिल, यही देखो चैतन्य कृपा महाबल तार अनुसंधान बिना कराय सफल। उन्होंने पहले आज सवेरे उन्होंने रथ के सामने झाड़ू दिन दिन बन करके राजा होकर के, इसलिए वो आज प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के तुम कौन हो कल्याण, और तुम कौन हो जो हमारा इतना हित कर रहे हो, हमारा कल्याण कर रहे हो और आकस्मिक रूप में आकर के हमें कृष्ण लीला रूपी अमृत का पान करा रहे हो। राजा ने कहा उत्तर दिया दिन की नुकर आनी तुम्हार दास भित्र भित्र कर यही मोर पास पास, मैं तुम्हारा कोई एक दासों का दास हूं, मैं आपके भित्तों का भित्त होना चाहता हूं, बस यही आशा से आपके सामने आकर के इसका कीर्तन कर रहा और कोई मेरी अभिलाषा नहीं है। तब महाप्रभु तारे धर्य देखाई रहा ऐश्वर्य देखाई रहा कारे हो ना कहिबे एई निषेध करिला। महाप्रभु जी ने उनको कहा अपना ऐश्वर्य दिख रहा है, क्या ऐश्वर्य दिख रहा है, ऐश्वर्य क्या दिख रहा है, कोई ऐसा ही सरभुज रूप इत्यादि दिखलाया होगा या कृष्ण ही के रूप में उनको दर्शन दिया
जगन्नाथ के रूप में,
इस रूप में किसी ने कुछ किया होगा। और कहा जैसे इसको किसी को मत कहना, एक समय में इसके पहले ही आगे की बात है, एक दिन प्रतापुर राजा जी जगन्नाथ जी का मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी को देखा और प्रणाम करने गए, प्रणाम करके जब उठ करके देखा तो देखा वहां पर और कोई नहीं है केवल चैतन्य महाप्रभु। फिर आंख मीचने लगे, आंख मीच करके फिर देखा तो देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, फिर जब देखने लगे तो फिर देखा देखकर के समझ गए कि महाप्रभु जी और कोई नहीं है जगन्नाथ, ये कृष्ण ही सच्चा। तब से उनकी निष्ठा और अधिक बढ़ गई, यही एक तरह से ऐश्वर्य दिखलाना है। उन्होंने कहा आपको मना किया कि आप किसी से इसको वक्त कहेंगे जब मैं जगन्नाथ हूं या कृष्ण, राजा है न ज्ञान कबू ना फील प्रकाश अंतरे सकल ज्ञाने बाहिरे उदास, राजा है न ज्ञान कबू ना कोई डर प्रकाश। महाप्रभु जी ने उनको राजा के रूप में ग्रहण नहीं किया और ऐसा उनको प्रकाश नहीं किया, किंतु अंतर से ही
भक्त होता हो
भक्त के रूप में ग्रहण ज्ञान करके सभी कुछ जानते हैं किंतु बाहिर उदास, अभी तक उनके प्रति उदास थे और अभी आगे भी उदास रहेंगे। विषयी है ना मरा हुआ सर्फ भी भय का कारण होता है, एक मिट्टी की पुतली भी स्त्री की या पुरुष की, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष की, उसको चित्त को हरण करने वाली होती है, उसको चित्त करने वाली होती है। उसी प्रकार से राम महाराज प्रताप को ऊपर से उदास है किंतु भीतर से उनका कृपा संचरित कर रहे हैं। भाग्य रे की भक्त करे राजा रे प्रशंसा करे आनंदी तमने प्राप्त रूप राजा के प्रति महाप्रभु जी की कृपा को देख करके सभी भक्त लोग अंतरंग भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए। दंडवत करी राजा बाज्य चलीला जोर हस्त करी सब भक्त गए बंदीला। वो वहां से उतर के चले आए महाप्रभु फिर भावाविष्ट हो गए उनको फिर होश नहीं और इधर वहां से उनको प्रणाम किया परिक्रमा किया और परिक्रमा करके फिर भक्तों के पास में आए और फिर भक्तों को प्रणाम करके फिर समस्त भक्तों की वंदना उन्होंने की। मध्यान्ह करीला प्रभु लैया भक्तगण बांधा प्रसाद लैया करी लाया भगवान। इसके बाद में महाप्रभु जी को फिर ये महाप्रसाद आया तरह तरह का इसमें वर्णन किया गया है और भक्तों के द्वारा उसका वितरण कराया और अपने भी पाए भक्तों को भी कराया। इसके बाद में वहां पर पहुंच करके जगन्नाथपुरी में पहुंचे वहां सुंदर अरुणाचल में पहुंचे और वहां पर जगन्नाथ जी को सुभद्रा बलदेव सुदर्शन सब को उतार करके सुंदराचल मंदिर में शाम को लेकर के उतारा। महाप्रभु अब पासी में अब पहले रहते थे गुंडीचा मंदिर में अब रहने लगे जगन्नाथ टोटा में अथवा आई टोटा में रहने लगे और वहीं से प्रतिदिन उनको पहले समुद्र में स्नान करते और समुद्र में स्नान करके प्रतिदिन उनको दर्शन करने के लिए जाते और प्रतिदिन उनको नित्य गीत सुना। अब उनकी ये भावना होगी कि महाप्रभु जी हमारे वृंदावन में पधारे और वही राधावेश से उनका दर्शन करते आनंद के साथ में भक्तों के साथ में प्रतिदिन कीर्तन करते। पांचवें दिन में हेरा पंचमी का दिन आया इसलिए यहाँ लिखा वृंदावन आया कृष्ण ये प्रभु ज्ञान कृष्ण बृहस्पति हरि लाया अवसान। बृहस्पति उनकी अब वही सोच रहे हैं कि वृंदावन में महाप्रभु कृष्ण जी हमारे पास में अब है राधा संगे कृष्ण लीला यही हरि ज्ञाने यही रस मग्न प्रभु हरि लाया अपने। बस इसी रस में मग्न हो गए मैं राधा हूं और कृष्ण हमसे मिल रहे हैं बस इसके अतिरिक्त वो विरह का अवसान से हो गया। इस प्रकार से रहने लग गए। हेरा पंचमी दिन आई राजा निया काशी में से कहे राजा सजत्न करिया कल हेरा पंचमी हवे लक्ष्मी विजय ऐसे उत्सव कर जे न कभू नहीं हार। चतुर्थ दिवस चतुर्थी के दिन उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र जी ने उनको बड़ा उत्साह हुआ क्यों उत्साह हुआ इस रथ यात्रा में उन्होंने महाप्रभु जी की कृपा बहुत रूप से पाई पहले की आज के पहले ऐसा उन्होंने नहीं देखा ये तो पहली बार है उन्होंने देखा सात दलों में कितना और देखा क्या और देखा उनका स्वरूप देखा उनका ऐश्वर्य भाव देखा और उनकी कृपा हुई यह कीर्तन किया उन्होंने जाति के अधिक और महाप्रभु जी ने उनको आलिंगन दान किया अपना हृदय उनको दे दिया मैंने हृदय से उनको करने की बात की इससे बड़े उत्साहित हैं और महाप्रभु जी को और प्रसन्न करना चाहते हैं इसलिए एक दिन पहले काशी मिश्र रूपी अपने पुरोहित जी को बुलाया और बोले जैसे हेरा पंचमी इस बार ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी वर्ष में नहीं बड़े उत्साह के साथ में और नवे रूप में होनी चाहिए सार श्रृंगार के साथ में होनी चाहिए। लक्ष्मी जी को सजाना है वहां पर बिमला जी उनकी सरस्वती है उनकी लक्ष्मी प्रिया जी उनके दो विग्रह हैं एक सचल और एक अच्छा। सचल वाली को सजाया जाता है और सजा करके उनको भी गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है और वही रथ को तोड़ती हैं जगन्नाथ जी के सेवकों को बांधती हैं और तरह तरह की लीलाएं और उसी का भी वर्णन करते हैं हेरा पंचमी कैसे पालित होता है। अभी हम लोग जाते हैं ना तो महाप्रभु के समय की बात है इस प्रकार से अब जाने पर यह सब दिखता नहीं अब देखते हैं कि रात 12 बजे तक दहिए में खूब उत्कंठा के साथ 12 बजे रात में टिम टिम करता हुआ एक मशाल आगे चलता है लक्ष्मी जी को कुछ लोग कंधे पर चार आदमी बैठा करके गाजे बाजे के साथ में कुछ लोग वहां से चलते हैं आ करके यहाँ आते हैं डंडा एक ऐसा नाम तो लगा दिया गाँव वो भी नहीं जगन्नाथ जी के मंदिर में जाती हैं और फिर घूम फिर करके और जिस मार्ग से जाती हैं उस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग से फिर कुछ समझ में नहीं आएगा ना कोई समझेगा। वो तो चैतन्य चैतामृत कारण है, वो समझा रहे हैं सुना रहे हैं इस विषय में। महाप्रभु जी ने उसको इस रूप में लिया था, भक्त लोग भी इसी रूप में लेते हैं और उनके सामने वैसा ही हुआ था। न तो अप्रताप रुद्र राजा है न वैसे कोई
राय दुर्वासे जोतने राखी लो प्रेम हेमकुंभ
कुंभक है चैतन्य चरितामृत। महोत्सव करा इच्छे विशेष संभार, देखि महाप्रभु जैसे है चमत्कार, ऐसा उत्सव करो जैसे महाप्रभु जी चमत्कृत हो जाए। कैसे होंगे? एक लक्ष्मी बने, उनकी प्रतिनिधि कोई रहे और परस्पर परस्पर में वार्तालाप होगी और लक्ष्मी जी ऐसा व्यवहार करेंगे जो महाप्रभु चमत्कृत हो जाए, मानो मान करके जा रही है और मान करके विवाद झगड़ा उपस्थित कर रही है और उसका ये स्वरूप सब वर्णन करेंगे
जो
पति को बांधने के लिए और उनको डांटने फटकारने के लिए जा रहे
हैं।
ठाकुर भंडार अमार भंडारे चित्र वस्तु तीन के लिए छत प्रशाम, लक्ष्मी जी की सवारी पालकी को अच्छी तरह से सजाया गया हमारे भंडार में, राजा के भंडार में और ठाकुर जी के भंडार में जितने स्वर्ण आभूषण किया जवाहर आते हैं वो सबको लाएगा और उसे आज सबको सजाया जाए, पालकी में सजाया जाए और लक्ष्मी जी को भी सजाया जाए। ध्वजा वृंद पताका घंटाए परम मंडलम नानाबाद के नृत्य डोलाए परम भूषण दिगेन करिया सब कर सब उपहार रथ जाता रथ यात्रा जैसे है। अब वहां से उनके भंडार से सोने जवाहरात और जिले के अलंकार, यहाँ पर द्वारकाधीश का भी बहुत भंडार बड़ा था, सोने रत्न जवाहर किया उन लोगों ने हड़प लिया।
किसने?
जो उसके रक्षक है उन लोगों ने हड़प लिए, उसके लिए कितना मुकदमा और कितना क्या कार्य सब हुआ था, नंदगांव का सब कुछ घुसाई लोगों ने साफ कर इसकी बारी उन लोगों को सब पुलिस पुलिस सब क्या कर। ऐसे ही सब अब हो रहा है, बड़ी बड़ा उनका ये रहता था कोसा का और उसमें ये सब चीजें सुरक्षित रहती। अभी हम लोग गए थे दक्षिण में हैदराबाद के पास में कौन सा स्थान है जहाँ पर कि बहुत रामचंद्र जी का बड़ा भारी विशाल मंदिर है, महाप्रभु जी वहां पर गए। अरे हैदराबाद के पास अभी मुझे याद गुरु जी के साथ में गए थे, वहां पर खजाना खोल करके टिकट लगता है देखने के लिए 5-5 रुपया उसमें लगता है। उनका जितना रत्न का भंडार है आदमी आश्चर्यचकित हो रहा है उनके भंडार में ऐसे सब रामचरण भी आते हैं, रामचंद्र जी का तो वहां पर ऐसे ही समस्त रत्नों से एकदम सजा दिया गया है। अब ये तो श्वेत पर्ण प्रभु लैया भक्त बन स्वच्छंद आसिया जैसे करे, अब ऐसे व्यवस्था करना कल चैतन्य महाप्रभु अपने परिक्रमा के साथ में आकर के इसका दर्शन करके चमत्कृत हो जाए, बड़े आनंदित होंगे। अब दूसरा दिन हुआ प्रातः काले, अच्छा ये शोभा यात्रा कब निकलती है? खेरा पंचमी के आधी रात के समय में निकलता है। अब उस दिन में महाप्रभु जी प्रातः काल में महाप्रभु निज बन लिया जगन्नाथ दर्शन कैलाश सुंदर आचरे जाए, वो पार्षद से पहले समुद्र में स्नान किया और स्नान करने के बाद में सुंदराचल में सुंदराचल का जहाँ पर ठाकुर जी है
गुंडीजा
मंदिर में जाकर के उनका दर्शन और दर्शन करने के बाद में नीला चले आईला पुनः भक्तगण संगे देखी तार उत्कंठा हेरा पंचम नील रंगे। सवेरे में दर्शन करके वहां पर और लौट करके आए कहां नीलाचल में जगन्नाथ जी के मंदिर के पूर्वी दरवाजा है सिंह दरवाजा उसी के पास में उनकी लिए व्यवस्था की गई। कहां पर व्यवस्था की गई थी किसी उच्च स्थान में
अच्छा
स्थान में महाप्रभु अपने परिकरों के साथ वहां पर विराजमान यहां से नीचे में जो बातें हो और अभिनय हो उसको वो देख सके और सुन सके
स्टेज बनाया
कुछ होगा वहां बनाया गया। और काशी मिश्र प्रभु ने बहुत आदर कर लिया स्वगन सह भाव स्थान है बसा इधर गई। ये कब की बात है सवेरे यहाँ शाम की
सवेरे
सवेरे की बात है रस विशेष प्रभु सुनते वहां पर देख रहे हैं कि उनको सजा करके ला जा रहा है
दक्षिण
और अपने परिकरों के साथ में तम तमाई भी कोख से पालकी में बैठ करके आ रहे हैं। किसी को हुक्म दे रहे हैं किसी को ऐसे कर रही है हाथ में कोई छड़ी भी है भेद इत्यादि भी है ईश्वर भाषिया प्रभु स्वरूप करे। अब उनका ये अभिनय होने लग गया महाप्रभु जी कह रहे हैं यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारका बिहार यद्यपि यहाँ जो ये समझो जो लीला हो ये समझो जो द्वारका की लीला है ये द्वारका की लीलाएं हो रही है यहाँ पर जगन्नाथ
लीला
चल और वहां पर लक्ष्मी कौन है सत्यभामा रुक्मणि प्रभृति ये सब लक्ष्मियां हैं
महिषी के प्रतिनिधि स्वरूप क्या है
ये प्रतिनिधि स्वरूप यहाँ पर विमला जी है तो ये लीला रही है वहां की। तो यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारका विहार द्वारका में विहार करते हैं और वहां पर द्वारकाधीश हैं अपनी रानियां हैं उनके लड़के हैं वहां पर प्रकट विहार कर रहे हैं सहज प्रकट करे परम उदार सहज प्रकट करे परम उदार तथापि बसरे मध्य हर एक बार वृंदावन देखी थे तार उत्कंठा और उसी में मग्न होकर के परिवार के साथ में स्त्रियों के साथ में भाई बलदेव सुभद्रा बहन सबके साथ में एकदम रंग में मग्न हो जाते पूरा 11 माने एक वर्ष तक वहां रहते हैं। उनमें से कुछ दिन उनकी इच्छा होती है वृंदावन देखते तार उत्कंठा एक बार उनकी उत्कंठा होती है वृंदावन में जाते किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार में बस कुछ दिनों के लिए ही वो कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिले वृंदावन समय उपवन का ये वृंदावन के समान ही यहाँ पर उपवन है वहां पर बालू की ऊंची राशि गो बनो तिराज वन वहां पर जमुना जी भरी माने समुद्र है समुद्र को देखकर के ही जमुना हो सकता वहां के वन है झाड़ियां हैं उसको देखकर के समझते हैं। अभी हम लोग जाते हैं वहां पर वन जंगल तो ऐसा नहीं दिखता है किंतु पहले वहां पर जहां पर जो रथ जाता है वहां पर वन जंगल रास्ते में भी था वहां पर बस्ती इत्यादि नहीं थी जैसे वृंदावन में पहले बस्ती नहीं थी केवल छठिकरा में कुछ बस्ती थी यहाँ पर की गोपी नंद बाबा इत्यादि लोग रहते और ये जो आधुनिक वृंदावन है कृष्ण की गोचारण की भूमि और आशस स्थली और उनकी लीला यहाँ पर कोई बस्ती इत्यादि नहीं महाप्रभु के आने के समय तक भी वहां पर एक भी घर और कुछ नहीं था उनको महाप्रभु की दो रोटी के लिए आना पड़ता था कहाँ अकूट घाट और इतना भयानक था जरा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता इसलिए उनको 3 बजे तक लौट करके चला आना पड़ता था यहाँ पर फिर दूसरे दिन सवेरे 8-9 बजे वहां जाते थे और तित्री परंपरियम तक वहां पर भजन करके जमुना के किनारे थे उसमें वहां पर आना सहज साधारण वैसे ही महाप्रभु के समय में केवल थोड़ा सा ही भाग जगन्नाथपुरी का होगा, वहां पर बस्ती थी, लाखों सब जंगल था, तो उसको वो उपवन कहते थे, ये जगन्नाथ टोटा को वो वृंदावन के समय। उसके समय में वर्णन किया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, या उनकी पंजी एक है कोई पुस्तक, उसमें वर्णन किया गया है, उस बगीचे में ऐसा कोई पृथ्वी का सुंदर पुष्प और फल नहीं है जो वहां नहीं। महाराज प्रताप रूप ने कहां कहां से सब प्रकार के पुष्पों को और फलों को के वृक्षों को सबको वहां पर लगाया। अभी भी वहां पर वो स्वर्ण चंपा और वो जो लंबे लंबे
केला
फूल,
सुपारी गाछ,
सुपारी गाछ, केले, कदम्ब, कमाल, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो वहां पर, सभी प्रकार के वहां पर वृक्ष हैं, इसलिए उनको वृंदावन की भाग होता था। उत्कंठित है उनका मन, उत्कंठित आज मैं जाऊंगा एक बार में, इसलिए रह नहीं सके। सुंदरा चले जाए तो उछाड़ी भी जा सके, कौशल से बहाना बनाकर उसे झूठ बोल करके लक्ष्मी से और जा रहे हैं सुंदरा चल रहे, मैंने वृंदावन के लिए जा रहे हैं निराशों को छोड़कर। नाना पुष्प जाने तो था खेले रात्रि दिन, दिन रात तक वहीं पर क्रीड़ा में मग्न हो गए गोपियों के साथ में। लक्ष्मी के सामने लाई लड़की का महाप्रभु जी पूछ रहे हैं, जब ये गए तो उनको नहीं या लक्ष्मी जी को, वो क्यों वहां पर गए और लक्ष्मी जी को किस लिए साथ नहीं लिया, किंतु ये नहीं पर लिखा बलदेव और सुभद्रा को क्यों लिया, किंतु हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है इसलिए लिया है कि उन्होंने माना नहीं, अकेले नहीं जाने दिया और कृष्ण को ले जाने के लिए राजी नहीं, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके बलदेव और सुभद्रा जी को उनके साथ में दे दिया। कृष्ण ने इनको प्रतिकूल नहीं समझ करके अनुकूल समझ करके इनको दिया, क्योंकि बलदेव प्रभु जी भी कृष्ण में बहुत दिनों तक रहे थे, वो सबका चरित्र भी जानते हैं, भावों को भी जानते हैं और इनके दोनों की प्यारी बहने होने के कारण और उन्हीं मैया की प्यारी लड़की होने के कारण लड़की देवकी की प्यार अधिक करती थी, इसलिए उनकी कथाओं को ये सुनाती समझती थी, इसलिए इनको साथ दी। वहां से आकर के सुंदराचल में क्या किया, उनको बैठा दिया मैया के पास या घर में बैठा दिया और अपने गोपियों के साथ में क्रीड़ा के लिए रात्रि वहां पर क्रीड़ा करें, किंतु लक्ष्मी को नहीं लिया। महाप्रभु जी का यह प्रश्न है, लक्ष्मी जी को साथ क्यों नहीं लिया। स्वरूप कहे सुनो प्रभु यहा कारण, वृंदावन क्रीड़ा के लक्ष्मी नहीं अधिकार करें, जो लक्ष्मी जी का वृंदावन की लीला में अधिकार नहीं, सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादियों का वहां पर अधिकार नहीं। वृंदावन लीला है कृष्ण सहाय गोपीगण, उनकी सहाय माने क्रीड़ा की सहायता करने वाली केवल मात्र गोपियां हैं, गोपीगण बिना कृष्ण हरि तो नारी। यहाँ पर और ब्रजाल दासियों की बात नहीं कही, सखाओं का भी नहीं लिया, माता यशोदा जी और नंद पिताजी को भी नहीं लिया और किसी का भी वर्णन यहां नहीं किया, क्योंकि ये विशेष रस का वर्णन है, इसलिए कहा जी गोपियों के बिना यह लीला संपादित नहीं होती, इसलिए गोपियों के बिना कृष्ण का कोई भी मन हरण नहीं कर पाता, न पा रहे हैं हम निर्वध संयोग। प्रभु कहे जाता चले कृष्ण रमन सुभद्रा बलदेव संगे दूजा, गोपी संग जत लीला है पवरे निगुण कृष्ण भाव के हो नही जाने, अतएव कृष्ण प्राकट्य नहीं कि छो खेल तब के लक्ष्मी देवी करे करोस। जब सुभद्रा बलदेव को लेकर के कृष्ण जा रहे हैं तो ये लक्ष्मी जी भी ऊपर होश के ऊपर करके मान अभिमान करके पेट हाथ में लेकर के बड़े रोष से क्रोधित होकर के कृष्ण को शासन करने के लिए डांटने फटकारने के लिए जा रही है। ये देख रहे हैं ऐसा क्यों? मैं तो समझता हूं कह रहे हैं महाप्रभु जी निगुण कृष्ण भाव क्यों नहीं जाने और तो कृष्ण प्राकट्य नहीं कुछ दोष गोपियों के साथ में ही इनकी इच्छा पूर्ति होती है इसलिए कुछ दिनों के लिए ये द्वारका से मथुरा गई वृंदावन जो जा रहे हैं नीलाचल से सुंदराचल जो जा रहे हैं इसमें कृष्ण का दोष क्या है? ये जो जा रहे हैं वहां तब लक्ष्मी देवी इतना क्रोध क्यों कर रही है? प्रेमवती जिन क्षेत्र में प्रेम होता है उसका ऐसा ही स्वभाव होता है यदि काम को उसके प्रति थोड़ा सा भी उदासीन हो जाता है तो उसमें क्रोध का भाव समझ यही क्रोध शो का बहन मान किसको होगा अभी जो अत्यंत अधिक जो प्रेम होती है साधारण ऐश्वर्य भाव से संपन्न स्वकीय भाव से रहेंगे उनमें कम होता है किंतु उनमें भी होता है उसको दबा करके होगा व्यक्त अधिक रूप में नहीं करता किंतु यहां पर इनका जो व्यक्त हो रहा है ये प्रेमवती का लक्षण है प्रेम में अधिक होने के कारण उनके प्रति उद्देश्यता है उनको छोड़ करके गोपियों के पास में आकर के लक्ष्मी जी को भूल गए हैं इसलिए इनको अब उसको क्रोध को कैसे प्रकाश करना है इसको आप ये बतला रहे उस प्रसंग को वही छोड़ आगे बतलाएंगे इसी समय में पालकी पर चढ़ करके चंदोला माने जिसको चार व्यक्ति धोके ले जाए धो करके वो चंदोला है पालकी में भी चार व्यक्ति ही करते हैं तो चार पालकी में दो दो एक तरफ में एक एक फूस में लगते हैं और इसमें चारों तरफ में वो डंडा होता है जिसमें चार व्यक्ति उसको ले जाते हैं ऊपर बहुत सुंदर रूप से वो छाया रहता है इसी समय खचित माने सोना रूपा चंद या हया जवाहरात इत्यादि के द्वारा निर्मित वो चंदोले ने पालकी में चढ़ करके आई सुबह चंदोला कर आरोहण छप्र चामक ध्वजा पताका वो लोग सब ला रहे हैं और आगे देवदासियों का नित्य हो रहा है देवदासी कौन उस समय भी ऐसी प्रथा थी कुछ लड़कियां स्वेच्छा से ही शादी नहीं करती और अपने को एकदम कृष्ण की दासी समझती थी जगन्नाथ देव की दासी समझती थी और उन्हीं की सेवा में सब समय मस्त रहती थी उनके आगे गीत गोविंद के पद गायन करती विशेष करके रात्रि में सब लोग जब चले जाते बहुत कम लोग रहते हैं सब उनके सामने में नृत्य और गायन करतियां और उन्हें करती कुछ दिन के बाद ये प्रथा दूषित हो गई बड़ी मस्कर से इसको हटाया अभी हटाया है कि क्या है अभी नहीं पता किंतु बहुत कुछ इसके संबंध में बातें हुई तांबुल संपूर्ण बिहारी व्यजन निचाम कितना बच गया इस तरह से वो अपने परिकरों को लेकर के वहां आई और आते ही अपने परिकरों को आदेश दिया जगन्नाथ अर्थात ये ब्रज के जितने इनके प्रकार हैं उनको सबको बांध लो अर्थात गोपियों को बांध लो जो हमारे स्वामी को लेकर के कहीं छिपा दिया है इसलिए क्रोधित होकर के पहले तो रथ के किस अंश को तोड़ने की चेष्टा है और कुछ थोड़ा सा तोड़ने के बाद में मंदिर में प्रवेश किया और प्रवेश करके और सब जितने जगन्नाथ जी के प्रधान प्रधान सेवक थे उनको पकड़ करके और उन्हें मारने लगे कैसे चोर दंड करे जिन्होंने लय चोर को जैसे पकड़ करके उसको दंड देते हैं, ऐसे एक कपड़े की गांठ बनाकर जिसे चोट भी न लगे। अथवा जगन्नाथ जी के यहाँ देखा होगा दर्शन करने जाते हैं, वो बांस के को फाड़ करके चीर करके ऐसा बनाते हैं जिसमें ऐसे मरने पर भी चोट ना आए और लोगों को हटाते हैं। ऐसे ही आवाज भी बहुत काफी करता, ऐसे उसी तरह से बना करके कोड़े जैसे बना करके और जगन्नाथ जी के समस्त परिक्रम को गोलू पीट रहे हैं और चोट जैसा दंड उनसे ले रहे हैं। अचेतन मत कर, ऐसा वो मान रहे हैं कि सचमुच में जैसे अचेतन होकर के गुरु गिर जाते हैं, अपने लोग भी कर रहे हैं। नारा मत गाली दे, आप भंड वचन और उनके जो परिकर हैं गोपियों के लिए नाना प्रकार के भंड वचन, उसे भंड माने क्या गाली गलौज जैसे करते हैं वैसे कृष्ण के लिए और उनके लिए दोनों के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। लक्ष्मी समेत दासी गणे प्रगल्भ देखिया, हंसे महाप्रभु गान मुखे हस्त दिया। लक्ष्मी के साथ में उनके जो परिकर हैं, इस प्रकार गोपियों को गाली देती हुई और जब उनको मार रही और दंड दे रही है और उनके सब धन रत्नों को छीन रही है, उसमें महाप्रभु जी हंस रहे हैं। दामोदर का है ऐसे माने प्रकार महाप्रभु जी इंगित करते करें जैसे ये सब क्या हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य है। देखिए उनकी दासियां उनको मार रही हैं गोपियों को और उनके रत्न लेकर के दंड दे रही हैं उनको, तब दामोदर जी कह रहे हैं देखो मान ऐसा ही कर रहा है। विशेष करके ब्रज का जो मान है गोपियों का मान, वो सतधार गंगा की जैसे धारा समुद्र में मिलती है तो सैकड़ों धाराएं हो जाती हैं और तब गंगा निजी समुद्र में मिलती है,
सतऊंची गंगा,
सतऊंची गंगा भी कहते हैं। अभी भी सुंदरगढ़ में ऐसा ही दृश्य है, यहाँ से तो एक दिखती है भगवान, भगवान से प्रयाग और प्रयाग से कलकत्ते तक, इसके बाद में जब उससे आगे बढ़ करके सुंदरबन आता है वहां पर हजारों धाराएं हो जाती है, कभी एक धारा चलती है कभी एक धारा चलती है कभी सभी धारा चल रही है और संपूर्ण। ऐसे ही गोपियों का मान भी हजारों प्रकार के, इसका वर्णन करना सहज साध्य नहीं है। माननीय मेनुषा है छाड़े की भूषण, साधारण रूप में यह रीति है कि प्रिय यदि किसी प्रकार से प्रिया का के प्रति उदासीन होता है उसको सम्मान नहीं करता, किसी प्रकार से अपने को अपमानित समझती है, उपेक्षित समझती है, तो साधारण रूप में